ओम शांति। आज का सोमान याद है सभी को? मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ। और सभी ने बाबा को पत्र लिखा? किस किस ने लिखा? अच्छा, तो 25% ने लिखा। हाँ, बाकी सब क्या व्यस्त थे? ठीक है, कल की दिनचर्या का एक्यूरेट पालन करना। हाँ, अभी गीता बहन जी फिर से हमारे मध्य में है, उनका हम फिर से लाभ लेंगे, तो स्वागत करते हैं एक हाथ की ताली से। आपका विषय है ग्रस्त जीवन में कमल फूल समान कैसे रहें। बाबा की हम ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले भाई बहनों के प्रति विशेष यही श्रीमत है कि ट्रस्टी बनकर रहना है, न्यारे और प्यारे रहना है। जैसे कमल कीचड़ में उगता है लेकिन कीचड़ से न्यारा भी है और प्यारा लगता है। तो संबंधों में रहते हैं, परिस्थितियों में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, लेकिन फिर भी न्यारा भी रहें और प्यारा भी रहें। तो वो विधि क्या है, वो कला क्या है, वो हम समझेंगे।
ओम शांति। जो इसमें कुमार कुमारियां हैं वो हाथ ऊपर करें। फिर वो क्या बनेंगे? हाँ, कुमार कुमारियां क्या बनेंगे? बाबा ने क्या कहा है? कुमारियां जवाब दो। हाँ, कुमार भाई जवाब दो। बाबा ने कहा है न रूहे गुलाब, क्योंकि वो तो ग्रस्त में गए नहीं ना। कुमार कुमारी की स्थिति में ही बाबा मिल गए तो गृहस्थ तो है ही नहीं। कमल है क्योंकि कीचड़ में पड़े नहीं ना। हाँ, इसलिए उनको बाबा कहते हैं रूहे गुलाब बनो। रूहानियत की खुशबू से भरा हुआ गुलाब बनो। और बाकी संसार अनादि काल से प्रवृत्ति मार्ग का ही बना हुआ है। सतयुग में भी प्रवृत्ति मार्ग ही है ना। ये तो संगम युग में जिसको जिस स्वरूप में बाबा मिले उनको उसी स्वरूप में रहते हुए बाबा की श्रीमत का पालन कर बाबा का मददगार बनना है। अगर हमें कुमारी स्थिति में बाबा मिले हैं तो अपना वही स्वरूप रखते हुए कुमारी जीवन में बाबा का मददगार बनना है। जो जिस स्थिति में है, ग्रस्त में है, तो उनको बाबा कहते हैं कमल बनो। कुमार कुमारी है तो बाबा कहते हैं तुम बाबा से अपना जीवन जोड़ो और रूहे गुलाब बनो। तो संसार तो अनादि काल से प्रवृत्ति मार्ग का ही है और इसलिए बाबा हम बच्चों को भी यही लक्ष्य देते हैं कि भले गृहस्थी नहीं बनाई, रचना नहीं बनाई, पर संबंध और परिवार तो हरेक को है, जन्म जन्मांतर से हम पारिवारिक जीवन के अनुभवी हैं। आत्मा का ड्रामा में आना माना परिवार में बंधना, माँ बाप भाई बहन ये संबंध तो रहते ही हैं। इसलिए देह संबंध में तो हर आत्मा को आना होता है, उसमें कैसे कमल बनना है। तो पहले तो बाबा ने हम बच्चों की स्मृति को ही चेंज कर दिया कि सलौकिक जन्म में हम हरेक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। इस अलौकिक जीवन में बाबा ने किसी को अधर कुमार अधर कुमारी नहीं बनाया है, है ना? ये तो लौकिक जीवन के हिसाब से गृहस्थ में रहने वाले और फिर बाबा के श्रीमत पर पवित्र बने तो उनको अधर कुमार अधर कुमारी कहते हैं। पर इस अलौकिक जीवन में तो हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, एक ही ब्रह्मा बाप के बच्चे, आपस में भाई बहन हैं। और निराकार स्वरूप में आत्मा आत्मा भाई भाई है, है ना? बाबा कहते हैं ना, पवित्र बनने की सबसे सहज युक्ति ये है कि बाबा ने हमारी स्मृति को चेंज किया, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस थे तो देह दृष्टि से ही अपने आप को देखते थे, दूसरों को भी देखते थे। देह संबंध की दृष्टि से, दैहिक कार्यों की दृष्टि से ही एक दो को देखते थे। पर मूल सत्य क्या है? मूल रूप से तो हम आत्मा हैं, एक ही शिव बाबा के बच्चे हैं और आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। और अभी साकार रूप में संगम युग में ब्रह्मा बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हम अलौकिक भाई बहन हैं। तो ये बाबा ने प्रथम पाठ से ही हम सबकी स्मृति को बदल दिया। और जितना ये स्मृति हम प्रैक्टिकल स्वीकार करते हैं, सिर्फ नॉलेज की दृष्टि से नहीं पर प्रैक्टिकल हम स्वीकार करते हैं, तो अपने आप हमारे जीवन में पवित्रता नेचुरली धारण हो जाती है। फिर भल हम कितने भी भाइयों के साथ बहनों के साथ कामकाज करते हैं, सेवा करते हैं, पर हमारी स्मृति यथार्थ है तो हमारी वृत्ति भी आत्मिक बन जाती है। और उसके कारण जो हमारी प्रवृत्ति है, कृति है, व्यवहार है, वो एक दो के साथ शुद्ध बन जाते हैं। तो देखिए बाबा के एक ही सत्य में, बाबा के प्रथम पाठ में ही कितनी शक्ति है, ये आप देखो कि आधा कल्प भक्ति करने पर भी जो दृष्टि वृत्ति हम चेंज नहीं कर पाए, बल्कि और विकारी बनते गए, उतरती कला में आते गए। बाबा के सत्य ज्ञान के प्रथम पाठ ने ही हमारी स्मृति को बदल दी है। इसलिए बेसिक फंडामेंटल साधना को बहुत पक्का करना है। बाबा क्या अभ्यास करते थे पता है ना सबको। खुद बाबा ने भी आत्मा का पाठ पक्का किया और परिवार को भी वो पाठ पक्का कराया। तो सभी अपनी डायरी पेन खोलो और लिखो ये पाठ। आप अपने अपने परिवार का लिखो कि मैं आत्मा हूँ। जो आपका पति है तो उसका नाम लिखो, ये भी आत्मा है। पत्नी है तो लिखो, ये भी आत्मा है, उनके नाम से लिखो। भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, जो भी है, जिसके साथ प्रैक्टिकल आप रहते हैं अभी, उनके नाम से ये पाठ लिखो। नहीं है डायरी? पहले खुद का लिखो, मैं आत्मा हूँ। फिर पिताजी का नाम लिखो, वो भी आत्मा है। माताजी का नाम लिखो, वो भी आत्मा है। भाई है तो भाई का नाम लिखो। कितने भाई है, जितने हैं उतने नाम लिखना। बहन है तो बहन का नाम लिखो। पति है तो उसका नाम लिख के लिखो, वो भी आत्मा है। पत्नी है उसका नाम लिखो, बच्चे हैं उसका नाम। प्रैक्टिकल अभी जिसके साथ आप रहते हैं वो नाम लिखो कि ये भी आत्मा है। हाँ लौकिक है ना, अलौकिक तो आत्मा आत्मा भाई भाई ही है ना। बाप माँ बाप और बच्चे, बाबा कहते हैं ना, इस अलौकिक परिवार में और कोई संबंध नहीं है। अलौकिक जीवन में छोटा सा परिवार है, माँ बाप और बच्चे। ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा माँ, शिव दादा और हम बच्चे बस। तो ये पाठ हमें भी पक्का करना। एक ब्रह्मा कुमारी के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं? सोचिए, एक ब्रह्मा कुमारी बहन के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं? ऐसा ही व्यवहार घर में भी करना है। ऐसा ही व्यवहार घर में भी करना है। अलौकिक जन्म लिया तो कलयुगी जीवन पूरा हो गया, अलौकिक मुख से बोलने की जरूरत नहीं है। मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, पर समझने की बात और उस अनुसार व्यवहार करने की बात। बोलेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे ना, तो डिससर्विस तो होगी। तो जितना बाबा के ज्ञान को समझकर सत्य स्वीकार करते हैं प्रैक्टिकल, तो बहुत जल्दी हमारी वृत्तियां शुद्ध होने लगती हैं। दूसरी बात, बाबा सबसे ज्यादा अभ्यास देहभान से न्यारा रहने का करा, क्योंकि देहभान वो द्वार है जहां से हम विकारों की दलदल में प्रवेश करते हैं। देह तो पूरे चक्र में रहेगा, है ना, सतयुग में हम देवता है, शरीरधारी ही है, पर विकार क्यों नहीं है, देहभान नहीं। देह में रहते हुए आत्मभान में, तो कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस वो रॉन्ग है। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, उसके बिगर कर्म कैसे करें। तो हर क्षण शरीर द्वारा ही कर्म करना है, पर अटेंशन क्या रखना है कि हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करते हुए आत्मस्मृति में रहना है, देह भान में नहीं आ जाना है। आत्मा का ये द्वापर युग से नेचर बन गया कि जिसके साथ निरंतर रहने लगे, कर्म करने लगे, तो हम उनसे अटैच होने लगे। इस अटैचमेंट को समाप्त करने के लिए, क्योंकि सन्यासियों को आत्मा का सही ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने क्या डिसिप्लिन बनाई कि साधु चलता भला। जो सन्यासी है उनको कहीं ठहर के रहना नहीं, दो दिन रहो फिर जाओ, चलता भला, आगे बढ़ते जाओ, ताकि अटैचमेंट हो नहीं। पर वो शक्ति उसको नहीं कहे, बाबा की ज्ञान की शक्ति कितनी है कि हम रहते वहां ही हैं, पर हम देहभान से न्यारे रहे। तो डिटैचमेंट योग की पहली शर्त है। डिटैचमेंट, न्यारापन, सबसे डिटैच होंगे तो बाबा से अटैच हो सकेंगे। कहीं भी कोई भी एक से भी अटैच है तो आत्मा का नेचर है कि जहां अटैचमेंट है वहां फुल झुकाव भी हो जाता है उसका, उसका फुल अटेंशन उस तरफ चला जाता है। इसलिए जितना डिटैच बनते हैं उतना हम स्मृति स्वरूप बनते जाते हैं, वरना जहां अटैच है वहां ही फोकस रहते हैं और उसी की स्मृति रहती है। इसलिए बार 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 बाबा हम बच्चों को पाठ पक्का कराते हैं, देही अभिमानी बनो, देह भान से न्यारे रहो, मैं आत्मा हूं पर शरीर से अलग, ये भी अंडरलाइन कर कि मैं आत्मा हूं पर शरीर से अलग, क्योंकि शरीर तत्व है और मैं आत्मा शक्ति हूं। तो ये अलग पन बार बार रियलाइज करना है। इसलिए जिससे भी मिले, जिसको भी देखें, बातचीत करें, तो न्यारा बनने के लिए, क्योंकि कमल बनने की बात कही ना, कमल बनना माना न्यारा बनना है, तो हमें अपनी हर मुलाकात, मुलाकात शब्द समझते हैं ना, हर मीटिंग, जिससे भी हम मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, हम अपनी हर मुलाकात को स्पिरिचुअलाइज्ड करें, उसको अलौकिक बना दें। आप ज्ञानी से मिले, अज्ञानी से मिले, लौकिक से मिले, अलौकिक से मिले, परिचित से मिले, अपरिचित से मिले, पर रूहानियत से मिले। इसलिए बाबा के मिलन की विधि कौन सी है, दादियों से मिलन की विधि कौन सी है, एक क्षण दृष्टि देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल हम सबको भी प्रैक्टिस करना है कि आप जिस किसी से भी मिले, एक क्षण रूहानी बन जाओ, स्मृति से मिलो, ये भी आत्मा मैं भी आत्मा, खुद अलग हो जाओ और फिर मिलो। एक क्षण लगता है, ऐसा नहीं है उसको घूर घूर के देखो आत्मा आत्मा, ऐसा नहीं करना। ये तो अंदर की अवेयरनेस की बात है ना, कि एक क्षण खुद की रूहानियत में स्थित हो जाए। न्यारापन पक्का करना है ना, इसलिए हर मुलाकात को रूहानी बनाओ, स्पिरिचुअलाइज्ड करो। अब आप देखो अपने आप को, कई बार पहचानने वालों को खास फ्रेंडशिप है तो उनसे हम कैसे मिलते हैं, लौकिकता आ जाती है थोड़ी सी, है ना, लौकिकता आ जाती है मिलन में। पर कोई हमसे मिलने आए और हम अंदर से अलग हो जाए, कोई हमारे पास आया मिलने और हम अंदर से अलग हो जाए, ये प्रैक्टिस। तो इससे आत्मा का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, वरना हर आत्मा के अपने वाइब्रेशन से, देखो हर कोई मिलेगा तो अपने अपने थॉट के साथ मिलेगा, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है, कोई किस चिंता में है, कोई किस भय में है, किस तनाव में है, किस बात के चिंतन में है। तो हरेक के वाइब्रेशंस हमारे मन से टकराते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि आत्मभिमानी स्थिति सेफ्टी की स्थिति, इससे दूसरों के वाइब्रेशंस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आत्मभिमानी स्थिति सेफ्टी की स्थिति, जैसे कई बार दूसरों की बात देख के सुन के जान के हम ही दुखी हो जाते हैं, हमारी स्टेट डाउन हो जाती है। पर अगर इस विधि को आप अपनाएंगे तो उनकी बातों का, नेगेटिव बातों का, नेगेटिव वाइब्रेशंस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें सभी प्रभावों से भी तो मुक्त होना है, क्योंकि आत्मा पहले प्रभाव में आती, फिर लगाव में आती, फिर झुकाव भी होता। प्रैक्टिकल ज्यादा समय, बुद्धि, धन उस तरफ लगने लगता है। और जितना हम देह भान से न्यारे रहेंगे, मुरली में आप सुनते हैं ब्रह्मा बाबा देखो कितना अभ्यास करते थे कि मैं आत्मा मुख द्वारा बोल रहा, तुम बच्चे कानों द्वारा सुन रहे। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से मिल रहा है, वहां भी बाबा रूहानियत पक्का कर रहे हैं। बच्चे माना आत्माए, तो पूरी मुरली आप देखो बाबा कौन सा पाठ पक्का कर, क्योंकि ये आत्मभिमानीता के अभ्यास से ही हम आध्यात्मिक बनते हैं। तो ये चीज हमें भी करनी है, अगर हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रहे हैं तो बाबा ने भी तो ये पाठ पक्का किया। और बाबा तो कौन था, गृहस्थी था ना, देखो एक गृहस्थी आत्मा नंबर वन बन गई, कोई ने सोचा? लोग भी समझते हैं कि भाई सब कुछ छोड़े तो बन सकते। बाबा के बच्चों को भी कईयों को बुद्धि में है कि आप तो सेंटर में रहते हैं तो आप कर सकते हैं, हम तो घर में रहते हैं। तो अभी भी बाबा के बच्चों की बुद्धि में भी ये हैं, पर सत्यता क्या है? ब्रह्मा बाबा गृहस्थी नंबर वन बन गया, संपूर्ण बन गया। बाबा को भी तो पांच बच्चों का परिवार था ना, प्लस ईश्वरीय परिवार। बाबा सिर्फ सहयोगी नहीं था, जिम्मेवार था। सहयोगी और जिम्मेवार में फर्क है ना, वे आप सब सहयोगी हैं पर ब्रह्मा बाबा तो जवाबदार था ना। तो लौकिक और अलौकिक दोनों दो दो परिवार था उनको। तो हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर ब्रह्मा बाबा नंबर वन बन सकते हैं तो हम क्यों सोचे कि हम ग्रस्ती हैं। ग्रस्ती किसको नहीं है बताइए, समर्पित बहनों को नहीं है? हाँ, कितनी बड़ी ग्रस्ती है, कितना बड़ा भाई बहने, परिवार, कारोबार, सेवा, हर किसी को है ना। ये घर है वो सेंटर है, ये प्रवृत्ति है ये सेवा है, ये भी लौकिक संबंध है, ये ईश्वरीय परिवार है। है तो प्रवृत्ति में ही ना सभी। महत्व की बात क्या है? ये महत्व का नहीं है कि भाई आप घर में रहते हैं या सेंटर में रहते हैं या मधुबन में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अल्टीमेट अपने को बना वो ही सकेगा जिनको खुद बनना है और लगन है। मुझे मधुबन में रख दे पर मेरी खुद की लगन ना हो तो मैं नहीं बन सकूंगी। इतनी सुविधाएं होते हुए भी नहीं बन सकूंगी। और जिनको लगन है वो कांटों के जंगल में भी फूल बन के रहेगा। दूसरा एक और गृहस्थी जो कुमार कुमारियों को भी है, हर आत्मा को है, और वो बाबा ने कही है इंद्रिय रसों की गृहस्थी। इंद्रिय रसों की गृहस्थी में लगे हुए, कल बताया था ना, देखने का रस। बाबा कहते हैं ना, रास्ते पर जाते हैं मुड़ मुड़ के देखते हैं। मुड़ मुड़ के देखना माना सिर्फ देखा नहीं पर मन से चखा भी, रस भी लिया। वरना फिर देखने की क्या आवश्यकता थी, पर टेस्ट भी लिया मन से। बोलने का रस आवश्यक, हर किसी को बोलना है, ज्ञानदान जरूरी हम सबको करना है। कोई मुंह पर पट्टी हम नहीं बांधते हैं, पर बोलने का रस माना बोल करना, बात करने का मन करना। और आजकल तो हर एक को साधन मिल गया है बात करने का, कुछ काम नहीं होगा तो भी बात करते रहेंगे। अच्छा कहाँ तक पहुंचे, ठीक है अब कहाँ पहुंचे, ठीक है। पहले ऐसे घर से निकलते थे 10 घंटे के बाद पहुंचते थे, कौन पूछता था, पर अब घड़ी घड़ी फोन करते रहे, है ना। पर हम बाबा के बच्चों को तो अपने आप पर कंट्रोल है। हम मोबाइल कॉन्शियस नहीं है, नहीं है ना, है कोई? नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमें बताया है आवश्यकता है तो उपयोग करो, बस। ये भी प्रभाव में आना है ना, चीज का प्रभाव। खाने का रस, कई तंग हो जाते हैं कि योग में बैठता हूं तो भी यही आता है, आज पकोड़ा बनाएंगे, आज सब्जी कौन सी बनाएंगे। एक भाई ने तो कहा कि दीदी मैं तो परेशान हो गया हूं, योग में बैठता हूं तो भी खाने के ही विचार आते हैं। रस और स्वाद, क्यों बाबा ने अन्न शुद्धि करवाई, डिटैच करने के, सात्विक खुराक क्यों, स्वाद में नहीं जाना है ना। स्वाद में नहीं जाना मैंने ऐसे नहीं माताएं कच्चा पक्का बना के दे दे, वो बात नहीं है, ऐसा वैसा नहीं बनाना। पर बाबा कहता है ना कि जो स्वादिष्ट बनाते हैं ना, बहुत ज्यादा मिर्ची तेल, और दुनिया वाले तो लहसुन प्याज स्वाद के हिसाब से ही खाते हैं ना, तो बाबा ने सात्विक भोजन कर दिया कि थोड़े मसाले डालो, बहुत ज्यादा नहीं। सादा ड्रेस, मर्यादा पूर्ण वस्त्र है ना, ये सब परिवर्तन क्यों, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस बनाता है। बहुत अच्छे ड्रेस पहनेंगे, सिर्फ नए कपड़े भी जिस दिन पहनते हैं उस दिन आईने में दो बार ज्यादा देखते हैं। सिर्फ नए कपड़े पहनने से भी बॉडी कॉन्शियसनेस कितना बढ़ जाता। तो इसलिए बाबा ने सिंपल ड्रेस, जो प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहने हैं उनको जरूरी रंगीन कपड़े पहनने हैं, क्योंकि आप लौकिक में भी हैं, आप डबल रोल प्ले करने वाले एक्टर हैं, हम सिंगल रोल वाले, आप हमारे से ज्यादा कैपेबल हैं, आप डबल रोल प्ले करते हैं, तो वो रोल प्ले करना है, पर बॉडी कॉन्शियस नहीं बनना है। बाबा मुरली में कहते हैं खाओ पियो घूमो फिरो, पर बाबा को याद कर। तो जो खाना जो पीना जो घूमना जो फिरना बाबा की याद भुला दे वो नहीं करना है, इसका अर्थ ये है। ऐसे नहीं, कई भाई बहने कहते देखो बाबा ने कहा है ना खाओ पियो घूमो फिरो, पर बॉडी कॉन्शियस बना दे बाबा भुला दे ऐसा तो नहीं खाना पीना है ना, ऐसा तो घूमना फिरना नहीं है ना। तो ये लाइफस्टाइल क्यों बाबा ने सिखाई, क्योंकि इसका मनोस्थिति से संबंध है। और आप देह भान से न्यारे नहीं रहेंगे तो बाकी तो बहुत सारा कीचड़ है। और जितना हम आत्मभिमानी बनेंगे, डिटैच रहेंगे, तो आप हर सीन में साक्षी बन सके। ड्रामा की हर सीन में, हमारे सामने जो भी दृश्य आते, दुनिया में आप रहेंगे तो आंख बंद करके तो नहीं रहेंगे, कान को तो दरवाजे है ही नहीं जो बंद करें। देखने में, सुनने में, जानने में बातें आएंगी ना। हाँ, अनावश्यक इनपुट आप नहीं करेंगे। अनावश्यक इनपुट नहीं करेंगे कान द्वारा, आंख द्वारा। टीवी देखना न देखना आपके हाथ की बात है। अनावश्यक नहीं सुनना, वो तो आपके अपने अंदर कंट्रोल की बात है। पर जो जरूरी है वो तो देखना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, पार्ट तो प्ले करना पड़ेगा ना। वहां आपको ये आत्माभिमानी बनने का अभ्यास साक्षी बनने में मदद करेगा, क्योंकि कई चीजों में आपको साक्षी बनना होता है। हर बात में इन्वॉल्व नहीं होना होता है। और आजकल तो आप देखते हैं ना कि बच्चों को भी माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं आता है। आज के बच्चे अपने आप सब कुछ करना चाहते हैं, भले गलत करते हैं तो भी, हम राइट कहें तो भी उनको पसंद नहीं है। तो बहुत स्थानों पर आपको साक्षी बनना होता है। भल शुभ भावना है हमारी, पर वो हमारी शुभ भावना शब्दों में सुनना नहीं चाहते। वो तुरंत कह देंगे आपको नहीं पता चलता, आउट ऑफ डेट हो। वो तुरंत कहते हैं वो आप नहीं समझ सकते हैं, आपके जमाना अलग था, तुरंत ऐसी बात करते। अगर हम साक्षी नहीं बनेंगे हम खुद ही इंसल्ट प्राप्त करते। तो इसलिए बेटर है, बाबा ने हमें बहुत अच्छा सिखाया है कि हम शुभ भावना रखें कि इस अंतिम जन्म में जो आत्मा मेरे से जुड़ी है, मैंने बाबा से अपने आप का कल्याण किया है, ये आत्माएं भी सत्य को पहचाने, अपना कल्याण करें, बाबा के बने, जीवन महान बनाए। मन में ये भावनाएं जरूर रख, पर अनावश्यक इंटरफियरेंस नहीं, क्योंकि ये इंटरफियरेंस दखलंदबाजी जो करते हैं वो भी एक प्रकार का अटैचमेंट है। जहां तक आप समझते हैं कि वो आपको सुन लेते हैं उतनी बात बताओ, जहां वो कह देते हैं कि मेरे को पता है आप ज्यादा नहीं बताओ, तो हम शांत हो जाए, अपने स्वमान में रहे। पर समय पर उस मोमेंट वही आत्मा डिटैच रहेगी जिनको रोज न्यारा रहने का अभ्यास। समय पर क्यों भूल जाता है? क्योंकि बार बार रिवाइज करने का अभ्यास नहीं। तो ये इंद्रिय रसों की गृहस्थी, कईयों को हाथ लगाने का, स्पर्श करने का अटैचमेंट होता है। बच्चे हैं तो भी आत्मभिमानी दृष्टि से देखो, आप बहुत उनको अटैच करे होंगे वो आपका नहीं मानेगा, डिटैच रखेंगे तो मानेगा। देख लो, आप अभ्यास करके देखो, क्योंकि आपने बच्चे की दृष्टि से देखा ना, आत्मा की दृष्टि से देखा। शरीर छोटा है ना, बाकी है तो आत्मा ना। बच्चे कहते हैं ना, माताएं बच्चों को अगर थप्पड़ मारती है तो कहते हैं ना कि मेरा छोटा शरीर देख के मारती हो ना, बड़े शरीर वाले को मार के दिखाओ। हा? तो वो भी शरीर को देखा, उस रिस्पेक्ट से, आत्मा के रिस्पेक्ट से उनको हैंडल करो। भाई बैठो, बच्चा आता है बिठाओ बाजी। जितना अटैचमेंट से आप करेंगे तो वो आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कमल फूल बाबा ने बनाया कि हर कर्मेंद्रिय से कर्म करना है, पर न्यारेपन से कर्म करना है, आत्मभिमानी स्थिति से कर्म करना है, तो हर कर्मेंद्रिय कमल बनेगी। नैन कमल, देखो दृष्टि शुद्ध है तो नैन कमल है। मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, देवताओं की महिमा क्या है। हर कर्मेंद्रिय से वो कर्म करेंगे पर विषयी भाव नहीं, विकारी वृत्ति नहीं, आत्मभाव शुभ भाव। शुरुआत बाबा ने ब्रह्मचर्य से की। कमल जीवन माना, फर्स्ट बाबा ने धारणा ब्रह्मचर्य की कराई, क्योंकि वो मूल शक्ति है। हर शक्ति जो धारण करेंगे उनका सही उपयोग तब होगा जब ब्रह्मचर्य है। बाबा कहते हैं बर्तन साफ चाहिए, तो ये बाबा के बच्चों की महानता है कि दुनिया जिसको मुश्किल समझती है वो ब्रह्मचर्य की धारणा बाबा के बच्चों ने बाबा के बनते ही धारण कर ली। ब्राह्मण जन्म ही तब कहा जाता है जब ब्रह्मचर्य पालन कर। वरना आप क्लास भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, सहयोग भी देंगे, पर ब्रह्मचर्य की धारणा नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं हैं, आपका अलौकिक जन्म नहीं हुआ है। पवित्रता की शक्ति एक ऐसी शक्ति है, उसके बाद ही रूहानियत आएगी, तब तक रूहानियत नहीं आती। आप आध्यात्मिक कहला नहीं सकते। ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद पवित्र ब्राह्मण जीवन का हर श्वास, हर सेकंड सफल करने के लिए अब हम और पुरुषार्थी हैं। और आगे का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। दिनचर्या में परिवर्तन, जो बाबा ने दिनचर्या दी है अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक की दिनचर्या बाबा ने बना के दी, अमृत वेला योग, मुरली क्लास, शाम का योग, रात को अपना चार्ट बाबा से बात करना, ये विशेष हमारे पुरुषार्थ हैं और बाकी हमारे विशेष कर्म योग के पुरुषार्थ हर घंटे एक मिनट याद करना, ट्रैफिक कंट्रोल, बाबा को भोग लगाकर खाना, एक क्षण बाबा को याद कर घर से बाहर जाना, ये हमारे विशेष कर्म योग है और बाकी हर कर्म बाबा की याद से शुरू करना है। तो दिनचर्या में परिवर्तन आना चाहिए। आहार, विहार, व्यवहार, पहरवाइश, वांछन, पढ़ना, संग, ये सब हमारे शुद्ध ज्ञान युक्त बनने चाहिए। तो कमल फूल ब्राह्मण, फिर है अपने कारोबार में ट्रस्टी बनना, तो कहेंगे कमल बनकर हम प्रवृत्ति कर रहे, ट्रस्टी बाबा मालिक, हम निमित्त है। मन वचन कर्म, तन मन धन से लौकिक अलौकिक जो भी प्रवृत्ति हम करें श्रीमत अनुसार करें, तो ट्रस्टी। बाबा ने तो अलौकिक जीवन में क्या बनाया है, गृहस्थी नहीं बनाया है, हरेक को ट्रस्टी बनाया है, निमित्त भाव से करना। और वो भाव बदलने के लिए ही बाबा कहते हैं ना, घर नहीं समझो, सेवा स्थान समझो। संबंधी नहीं समझो, हम तो सह पात्रधारी हैं, को एक्टर्स। संबंधी तो एक परमात्मा ही है, पर इस दृश्य में हम साथी एक्टर्स हैं। बस अपना भाव चेंज करो। हमें सेंटर में निमित्त बनाया, आपको घर में बाबा ने निमित्त बनाया, बस कि ये पांच आत्माओं की तुम्हें पालना करनी, ये चार आत्माओं की पालना करनी। बताया ना, साकार बाबा से एक भाई ने पूछा कि बाबा मेरे तो 3-4 बच्चे हैं, मैं तो बच्चरवाल हूँ, उसी में सारा समय जाता है, बाबा मैं कैसे पुरुषार्थ करूं। तो बाबा ने उसको कहा, बच्चे तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी बनी बनाई गीता पाठशाला है, और कोई गीता पाठशाला खोलेंगे तो स्टूडेंट बनाने पड़ेंगे, तुम्हारी बनी बनाई गीता पाठशाला है। तुम रोज इन ठाकुरों को बैठ के पढ़ाओ। बच्चे नहीं समझो, ठाकुर जी कहते हैं छोटे कृष्ण को जो पूजते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं, तो तुम इन ठाकुरों को रोज पढ़ाओ। कर्तव्य करना है, पार्ट प्ले करना है, दृष्टि वृत्ति भाव बदलना है, और श्रीमत पर लिमिट करना है। श्रीमत हमें वो सीमा बताता है किस लिमिट तक हमें उसमें जाना है। बाबा कहते ना, मुझे कुछ तुम्हारा चाहिए नहीं, तुम्हारा तुम्हें ही संभालना है श्रीमत पर, ताकि वेस्ट ना हो, कोई पाप ना बने, इसलिए श्रीमत पर अब कारोबार चलाओ। तो ट्रस्टी बनना है। तो देहभान से न्यारा, कमल फूल, ट्रस्टी, और उससे आगे चलो आप ट्रस्टी भी हैं, प्रैक्टिकल कोई 20 साल 30 साल 40 साल 15 साल से ज्ञान में चलने वाले, जो लक्ष्य पूर्वक चलते हैं वो तो श्रीमत पर चलते हैं, कमल फूल हैं ट्रस्टी बन चलते हैं, पर और अलौकिक जीवन परिवार और सेवा में फरिश्ता, वहां आप कमल बने, कारोबार में ट्रस्टी बने, अब एक नया परिवार ये मिला है, यहां भी फरिश्ता लाइट पर कोई लकीर आप बना सकते हैं, जमीन पर लकीर बन सकती है, रेत में बन सकती है, पानी में बन सकती है, भले बनेगी और मिटेगी, रेत पर बनेगी थोड़ा टाइम रहेगी, पत्थर पर बनी रहेगी, पर लाइट पर लकीर हो सकती नहीं। ईश्वरीय परिवार में, सेवा कारोबार में फरिश्ता, बल कितने भी हम बाबा के बच्चे अच्छे हैं, सुख देने वाले हैं, सहयोगी हैं, सर्विसेबल है, पर वहां भी न्यारा और प्यारा फरिश्ता। न फंसना न फसाना, और लास्ट बात, बाबा ने हम सब बच्चों को फाइनल प्रोग्राम दे दिया है, कौन सा, वापस घर चलना। मिला है प्रोग्राम सबको, हाँ, आप दीदी से पूछते हैं ना, दीदी क्या प्रोग्राम है। बाबा ने सबको फाइनल प्रोग्राम दे दिया है। क्या दिया है? पसंद है ना ये प्रोग्राम कि नहीं पसंद है? ये फाइनल प्रोग्राम है, पसंद हो या ना हो। ये निश्चित भावी है ड्रामा की। ड्रामा में डिटैचमेंट का परमानेंट सॉल्यूशन है। कि आप समझ पूर्वक डिटैच नहीं बनेंगे तो शरीर छोड़ के तो जाना ही। पर वो मन की खींचतानी रहेगी, इससे तो बाबा ने कहा जीते जी मर जाओ। ये सिर्फ बात नहीं है, रियलिटी है कि ड्रामा का ये साइकिल पूरा हो रहा है। हमें वापस घर जाना है, जिसके साथ जाना है और जहां जाना है ऐसा बनना है, क्योंकि उड़ना है ना। तो जितना ये चीजें समझते हैं, स्वीकार करते हैं, बार बार याद करते हैं, तो अपने आप को आप न्यारा बना सकते हैं और बाबा के प्यार में हम निरंतर रह सकते। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद गीता बहन जी का। बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट किया आपने कि न्यारे रहने के लिए हमें आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास बनाना है, और दूसरा ट्रस्टी बनना है, और तीसरा फरिश्ता बनना है, और वापस जाने के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो अभी आपके लिए पहले हम बाबा की याद में बैठेंगे।